13 नंबर के रजिस्टर में 62 पेज 27-7-90 का पहला क्लास रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप का मतलब बिंदु नहीं, सिर्फ बिंदु तो समझाया भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ शब्द लगा है बैठ। बैठ माना जरूर किसी तन में बैठ कर, बाकी बिंदी को खड़े होने बैठने सोने या दौड़ने की तो बात ही नहीं। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते, देह अभिमान वाले बच्चे एक तो समझ भी नहीं सकते न उनको बाप समझाते। जब पहले कोई को समझाते हो तो पहले ये क्लियर कर दो कि बाप एक है, पूछना नहीं है कि बाप एक है वा अनेक है, ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। कहना यह है बाप रचयिता गॉडफादर एक है, बाकी सब रचना, रचयिता क्रिएटर एक है, बाकी सब क्रिएशन है, वो सब आत्माओं का बाप है। जो सबका क्रिएटर है सबका रचयिता है उसको रचने वाला कोई नहीं, और वो सबको रचने वाला है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वो बिंदी है, इसमें फिर मुझ पड़ेंगे। पहले पहले तो ये अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक तो हर एक का होता ही है, उनको कोई खुदा कोई गॉड कहते हैं, वो है पारलौकिक, है एक ही, और वो सब एक को याद करते हैं। पहले पहले पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग का रचने वाला, तो पक्का करने की बात क्या हुई, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी समझते हैं कि बाप सिर्फ ज्ञान सुनाने वाला है, बाकी ज्ञान सुना के चला जाता है, फिर स्वर्ग की रचना हम करते रहते हैं। लेकिन नहीं, उनको ये पक्का निश्चय कराओ कि फादर ही स्वर्ग की रचना करने वाला है, बाप यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने। यहाँ माना सूक्ष्म वतन में नहीं, यहाँ माना इस सृष्टि पर आएंगे ही किस लिए, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। जरूर स्वर्ग स्थापन होगा तब तो स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, और आएंगे यहाँ आएंगे का मतलब ये भविष्य में आने वाला पार्ट है, फ्यूचर का, फ्यूचर की तरफ इशारा किया। यानी जिस तन से बोल रहे हैं, ये वाणी जिस तन से बोली गई उसके द्वारा कोई स्वर्ग की रचना नहीं होती। तो बाप यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। क्या जब स्वर्ग का मालिक बनाए, जब आए और जब स्वर्ग का मालिक बनाए उसको क्या कहेंगे, शिव जयंती, शिव की जय जयकार। कौन सी जय जयकार, कोई स्थूल जन्म नहीं है, ये तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म की जय जयकार है। तो स्वर्ग का मालिक कब बनाएंगे, कब कही जाए शिव जयंती, प्रत्यक्षता रूपी जन्म की शिव जयंती कही जाए तो वो कब कही जाए, कौन से वर्ष में, 36 में। 36 में तो प्रत्यक्षता नहीं कहेंगे, पूरी पूरी क्या, अधूरी भी नहीं। क्योंकि बाप तो बीज बोने के समय तो बाप गुप्त ही रहता है बच्चों के सामने। बच्चे क्या जाने कि बाप कौन है और क्या करता है। तो कब कहेंगे 76 में विश्व का मालिक बनाया, स्वर्ग का रचयिता बनाया। बाप यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। तो स्वर्ग का मालिक बनाया 76 में, हाँ, जिसको शिव जयंती कहेंगे। किसको? बाप यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। किसको शिव जयंती कहते हैं? जब स्वर्ग का मालिक बनाता है। तो कब बनाता है? 76 में, 96 में। तो कब शिव जयंती कहेंगे? 76 में कहेंगे, 96 में कहेंगे? 76 में स्वर्ग का मालिक बनाया, हाँ। स्वर्ग का मालिक सबको तो नहीं बनाया, लेकिन जिसको बनाता है उसको ये पक्का निश्चय बैठ जाता है कि मैं अब स्वर्ग का मालिक बनने वाला हूँ। तो पहले तो बुद्धि में ही निश्चय बैठेगा, फिर स्थूल रूप में सारी दुनिया में प्रत्यक्षता हो। तो वो हुई शिव जयंती, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। ये घोषणा भी किसने कराई बाप की प्रत्यक्षता वर्ष की? ब्रह्मा कुमारियों ने नहीं, ब्रह्मा कुमारों ने नहीं, अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। क्योंकि विदेशियों के द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होते हैं, बाहर की दुनिया के विदेशियों की बात नहीं थी। उन विदेशियों के पीछे पड़ करके उनकी सेवा करने की बात नहीं थी। वास्तव में बाप की प्रत्यक्षता तो बाप के बच्चे ही कर सकते हैं, जो माला के मण के बनने वाले होते हैं, जिन्होंने बाप को अच्छी तरह पहचाना हो, वो ही प्रत्यक्षता कर सकते हैं। तो 76 में जो सारे जगत की बीज रूप आत्माएं, जिसे तीसरी दुनिया के लोग कहा जाता है, पहली दुनिया कौन सी? वेद की भाषा में 500 करोड़ की दुनिया। दूसरी दुनिया कौन सी? ब्राह्मणों की, जो ब्रह्मा मुख से पैदा हुए, उनको कहेंगे दूसरी दुनिया। आधार मूल तो ब्राह्मण सभी हो गए इसमें। और तीसरी दुनिया उनमें से भी जो विशेष चुनी हुई आत्माएं रुद्रमाला के मण के बनने वाले हैं, जो जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाली आत्माएं हैं, वो रौद्र रूप धारण करने वाले रुद्र, ज्ञान यज्ञ की स्थापना करने वाले बाप के बच्चे रुद्रगण, जिनकी रुद्रमाला बनती, वो है सारे विश्व के बीज चुने हुए। तो वो बीज रूप बाप के बच्चे बीज रूप वो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। उनमें भी कौन प्रत्यक्ष करते हैं? जो विदेशी धर्मों के बीज हैं, क्योंकि चार ही मुख्य धर्म हैं, देवता, इस्लामी और बौद्धी और क्रिश्चियन। तो देवता धर्म का बीज वो तो स्वयं बाप ही होता है, वो तो अपनी प्रत्यक्षता क्या करेगा? और अपनी प्रत्यक्षता अपने आप कोई करे तो प्रत्यक्षता हो नहीं सकती। अपने को सिद्ध करने वाला कभी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। तो प्रत्यक्ष कौन करते हैं? जो विदेशी बच्चे हैं, इस्लाम धर्म का बीज, क्रिश्चियन धर्म का बीज, बौद्ध धर्म का बीज। तो सृष्टि के आरंभ की परंपरा में ब्रह्मा के चार पुत्र दिखाए जाते हैं, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। तो सनत कुमार को सबसे ज्ञानियों में बड़ा दिखाया गया, वो सबसे ज्यादा ज्ञानी थे और योगीश्वर भी कहे जाते थे। तो जो ज्ञानियों के पुरुषार्थ में बड़ा वो ही बड़ा घर। अब उसको सनत कुमार नाम दो या बाद में शंकर नाम दो, बात एक ही है, क्योंकि योगियों का ईश्वर तो एक ही होगा। ईश्वर माने शासन करने वाला, तो उस एक के लिए प्रत्यक्षता की बात है कि बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन वो तो बाप का रूप ही हो गया, क्योंकि प्रजापिता माना बाप। तो बाप यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रचयिता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, कोई विदेशों में स्वर्ग नहीं रचते हैं। उस बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए कोई स्थूल रूप में जो विदेश है वहां भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का राज्य होता है। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। उनका नाम है शिव, गीता में भगवान वाच है ना। पहले पहले तो ये निश्चय कराए लिखाए लेना चाहिए। क्या पहले पहले क्या करना चाहिए? बाप का परिचय देना चाहिए और उनसे निश्चय कराए लेना चाहिए कि गीता का भगवान कौन है, निराकार शिव है या साकार कृष्ण है, ब्रह्मा है या निराकार स्टेज में रहने वाला है। क्योंकि ब्रह्मा के तो जितने भी फोटो खींचे गए उनमें धर्म पिताओं की तरह निराकार स्टेज तो किसी में देखने में नहीं आती। योगयुक्त स्टेज है लेकिन माता के रूप में, जैसे धर्म पिताओं की निराकारी स्टेज दिखाई गई है, वो क्राइस्ट की, महात्मा बुद्ध की, गुरु नानक की, उनके चेहरों को देखने से ही पता लग जाता है कि जैसे वो आत्मा इस सृष्टि पर नहीं है, कहाँ बैठी हुई है, परम धाम में बैठी हुई। तो निराकारी स्टेज ही उन निराकारी धर्म पिताओं की चेहरे को प्रत्यक्ष करती है कि ये धर्म पिताएं हैं, क्योंकि पिता होता है निराकार और माँ होती है साकार। तो पहले पहले ये निश्चय कराए लिखाए लेना चाहिए। गीता में है भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। ये मैं कहने वाला कौन, निराकार, निराकारी स्टेज वाला या साकार? जरूर निराकारी स्टेज वाला है, जो निराकार बनाता है। साकार क्या बनाएगा? साकार तो साकार ही बनाएगा, और निराकारी स्टेज में रहने वाला निराकार बनाएगा। जो निराकार बनाएगा वो ही निसंकल्पी स्टेज में पहुंचाएगा। जिसकी स्वयं निसंकल्पी स्टेज नहीं होगी वो दूसरों को निसंकल्पी स्टेज में परमधामवासी नहीं बना सकता। तो मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं, अर्थात नरसिंह नारायण बनाता हूं। ये कौन बना सकते हैं? नरसिंह नारायण कौन बना सकते हैं? कोई साकार बना सकता है नरसिंह नारायण? जो साकार होगा वो तो खुद ही नर होगा, क्योंकि मनुष्य सब देह अभिमानी होते हैं, साकारी होते हैं। तो मनुष्य मनुष्य को कैसे नारायण बनाएगा, आत्माभिमानी देवता बनाएगा? नहीं, ये तो परमात्मा का काम है मनुष्य से देवता बनाना। तो जरूर समझाना पड़े भगवान कौन है। फिर ये भी समझाना होता है, सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण है जरूर वही 84 जन्म लेते होंगे। रचयिता का ही नहीं बताना है, सिर्फ क्या बताना है कि जो पहले नंबर की रचना है लक्ष्मी नारायण, वो जरूर 84 जन्म लेते होंगे। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, انہوں کے اتنے جنم ہو نہیں سکتے، پہلے آنے والوں کے ہی 84 جنم ہوتے ہیں، بعد میں آنے والے جو لکشمی نارائن ہیں ستیگ میں ان کے 84 جنم نہیں ہوتے. کیا کہا، یہ بات کلیئر ہو گئی؟ ان کے بھی کچھ کم جنم ہو جائیں گے کیونکہ کچھ ورش کم ہو گئے. اب 69 میں شریر چھوڑ دیا، ان کو اپنا شریر تو ملنا نہیں ہے، شریر کہاں ملے گا؟ ستیگ میں جا کر کے شریر ملے گا، بچے کے روپ میں جنم لیں گے. تو تب تک کا جو گیپ ہو گیا وہ پورے 84 جنموں میں سے کچھ کم ہوا نا. تو بتایا کیونکہ وہ بھی چندرونشی ہوئے، جو سوریہ ونشی ہوں گے وہ ڈائریکٹ سوری سے جنم لینے والے ہوں گے پورے 84 جنم. پھر سوریہ ونشی، پھر چندر ونشی، پھر ویسی ونشی، اسلام ونشی، کرسچن ونشی، بودھ ونشی، یہ تو نمبر وار ہو گئے. ہاں کیا پرویش کرنے والا کوئی شاریرک جنم ہوتا ہے؟ 84 جنموں کے 84 باپ کہیں گے. تو پیچھے پھر اور دھرم والے آتے ہیں، مانے ستیگ میں جو بعد میں آئیں گے نارائن وہ دوسرے دھرم والے نارائن ہوں گے، دوسرے دھرم میں کنورٹ ہونے والی آتمائیں ہوں گی، دیوی دیوتا سناتن دھرم کی پکی نہیں ہوں گی. تو پہلے آنے والوں کے 84 جنم ہوتے ہیں، پیچھے آنے والوں کے اتنے جنم ہو نہ سکے. ستیگ میں تو کچھ سیکھتے نہیں ہیں، ضرور سنگم پر ہی سیکھتے ہوں گے. تو پہلے پہلے باپ کا پریچے دینا ہے. کیا کسی کو بھی سمجھانا ہوتا ہے، چاہے دنیا والوں کو اور چاہے گھر کے بھانتی برہما کمار کماریوں کو، تتھا کتھت برہمنوں کو، پہلے کیا سمجھانا ہے ان کو؟ پہلے پہلے باپ کا پریچے دینا. دنیا والوں کو بتانا ہوتا ہے تو صرف سامان نالج دی جاتی ہے کہ تم بندو آتما ہو، تم بندو آتما کا باپ، پرماتما جوت بندو ہے. یہ تو سامان نالج ہو گئی، یہ پرماتما باپ کی وشیش نالج نہیں ہوئی. وشیش نالج آتما کی بھی ہے تو پرماتما کی بھی ہے، ایڈوانس نالج جسے کہتے ہیں. آتما کی وشیش نالج کیا ہے؟ Who am I؟ میں آتما کون سی آتما ہوں، کس گروپ کی آتما ہوں، کس دھرم وشیش میں میرے کو پارٹ بجانا ہے، کس استھان وشیش میں جنم جنمانتر میرے کو پارٹ بجانا ہے، یہ انوبھوتی ہونے لگی. Who am I؟ میں آتما کون؟ باقی صرف میں آتما بندو، وہ تو دنیا کی ساری آتما بندو ہوتی ہیں. سب منشیہ آتما ہے تو کیا پشو پکشی کیٹ پتنگے سب کیٹانو ڈھیر کے ڈھیر سب بندو؟ تو یہ کوئی پریچے نہیں ہوا خاص کہ میں آتما بندو. تو جیسے آتما کا وشیش پریچے ہے آتماؤں کا الگ الگ، کیونکہ ہر آتما الگ الگ پارٹ بجانے والی ہے، تو ویسے ہی پرماتما کا بھی ایک سامان پریچے کہ پرماتما بندو ہے، پھر وشیش پریچے کہ وہ بندو ہے اور اس بندو میں کیا وشیش پارٹ بھرا ہوا ہے. تو وہ وشیش پارٹ بتایا، کیا بتایا ابھی مرلی میں، جو دنیا میں اور کوئی دھرم پتا نہیں کر پاتا، اور دھرم پتائیں صرف اپنا دھرم استھاپن کرتے ہیں، باقی دنیا نرک ہی بنی رہتی. نرک سے سورگ، سورگ نہیں بنتی، اور ہی نیچے گرتی چلی جاتی. اور پرماتما باپ کیا کرتے ہیں، نرک کی دنیا کو سورگ بناتے. یہ سورگ بنانے کا کام دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکتا، نہ دھرم پتا کر سکتا، نہ کوئی دھرم کی ماتا کر سکتی. تو پہلے پہلے باپ کا پریچے دینا. جیسے آتما دیکھنے میں نہیں آتی ہے، سمجھ سکتے ہیں. کیا سمجھ سکتے ہیں؟ कि आत्मा कौन सी आत्मा है। देखने में तो नहीं आती आत्मा, लेकिन समझ सकते हैं कि ये आत्मा कौन सा विशेष पार्ट बजाने वाली है। वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते हैं, इन आंखों से परमात्मा देखने से देखने में नहीं आएगा। हाँ, पार्ट के आधार पर परमात्मा पहचाना जा सकता है, ज्ञान के आधार पर पहचाना जा सकता है, बुद्धि से समझते हैं। वो हम आत्माओं का बाप है, वो हम आत्माओं का बाप है, ये बुद्धि से समझा जा सकता है। उनको कहा जाता है परमात्मा, किनको? जो हम आत्माओं का बाप है, आत्मिक स्टेज में रहने वाले जो हैं, उनका वो पाप है, उनका वो रक्षण करने वाला है। बाकी देह अभिमानियों का रक्षण करने वाला नहीं है। तो ये बुद्धि से समझा जा सकता है कि वो आत्माओं का बाप है, जानवरों का बाप नहीं। वो सदैव पावन है। जो आत्माओं का बाप है वो सदैव सदैव पावन है। मनुष्य तो कभी पतित भी होते हैं और कभी पावन भी होते हैं। कोई ऐसी स्थिति भी बनती है जो वो पतित हो जाते हैं, अनुभव करते हैं कि हमारा क्षरण हो गया, नीचे गिर गए, मन बुद्धि पतन में चली गई, इंद्रियों में क्षरण हो गया, इंद्रियों में कमजोरी आ गई, मनसा क्षीण हो गई, बुद्धि में से ज्ञान निकल गया। ये अनुभव तो मनुष्य करते हैं, लेकिन परमात्मा, परमात्मा ऐसा किसी भी स्थिति में, कोई भी संघ के रंग में ये अनुभव नहीं करेगा। क्या? कि मेरा पतन हो गया। वो तो सदा शिव है, सदा पावन है, एवर प्योर है। उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता। अगर वो भी पतित पने का अनुभव करे, कैसी भी स्टेज में, किसी के संग के रंग में आए, कैसे भी कीचड़ में हो, अगर वो भी पतित पने का अनुभव करे, तो पतितों को पावन कोई नहीं बना सकता। तो उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। तो वो तो सदैव पवित्र है। तो पहले बाप एक है ये सिद्ध करके बताने से गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, वो भी स्वतः सिद्ध हो जाएगा। क्या? अगर ये साबित हो जाएगा कि गीता का भगवान वो निराकार बाप एक है, तो बुद्धि में से अपने आप निकल जाएगा कि जो दूसरा है, क्योंकि भगवान तो एक ही होगा, तो जो जिसको हम दूसरे को भगवान समझते हैं वो भगवान नहीं हो सकता। गीता का भगवान कृष्ण नहीं, ये भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों को सिद्ध करके बताना है, एक बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। जो बाप एवर प्योर है, कभी पतित नहीं बनता, एवर प्योर की ही पूजा होती है, पतित की कभी पूजा नहीं होती, पवित्रता की ही पूजा की जाती है। देवताओं के मंदिर बनाकर उनकी पूजा होती है, शिव बाबा के मंदिर बनाकर उनकी पूजा होती है, सन्यासियों के मंदिर बनाकर उनकी पूजा नहीं होती, क्योंकि वो एवर प्योर नहीं है। क्या? जब स्त्री के संग में पहुंचेंगे तो पतित हो जाएंगे, जंगल में चले जाएंगे तो पावन रह सकेंगे, तो उनको सदा पावन कहेंगे क्या? सदा पावन तो हुए नहीं। तो ये इस बात को गहराई से समझना है कि पवित्रता वाले वातावरण में रह करके तो सब पवित्र रह सकते हैं, लेकिन अपवित्र वातावरण में, कीचड़ में रह करके जो पावन रहे और सदा पावन रहे, कभी पतित न हो, तो वो ही एवर प्योर है। बाकी सब को प्योर नहीं कहेंगे। तो एक बाप ही ट्रुथ कहा जाता है, जो एवर प्योर है वो ही ट्रुथ है, और बाकी सब कुछ न कुछ झूठ जरूर है। है ये झूठ खंड की दुनिया, बत्ती मार के शास्त्रों आदि से उतरते ही आए हो, क्योंकि लिखने वाले कौन है? हैं? भक्ति मार्ग का शास्त्र लिखने वाले कौन? रावण के हाथों में वेद शास्त्र दिखाई जाते हैं, तो रावण ही उनका रचयिता होगा। पुनर्जन्म लेते लेते कलाएं कम हो जाती, किसकी कम हो जाएंगी कलाएं? जो संशय निश्चय के जन्म मरण के चक्र में आएगा उसकी कलाएं कम होती जाएंगी। तो क्या करना चाहिए? सदा निश्चय बुद्धि होना चाहिए। एक बार बाप को ज्ञान की दृष्टि से पहचान लिया तो फिर निश्चय कभी टूटना नहीं चाहिए। अगर टूटता है बीच बीच में तो पतन जरूर होगा। तो सबसे जाती पति तो भारतवासी होते हैं या विदेशी? भारतवासी। क्यों? क्योंकि सबसे जाती जन्म मरण के चक्र 84 में भारतवासी आते हैं। दूसरे देश के विदेशी, दूसरे धर्म वाले न ज्यादा जन्म मरण के चक्र में आते हैं, न ज्यादा उनका मन बुद्धि रूपी आत्मा का पतन होता है। तो यहाँ शूटिंग हो रही है। क्या शूटिंग हो रही है? हाँ, आत्मा की भी शूटिंग हो रही है। ये शूटिंग हम अब जैसी चाहें वैसी भरें। अगर बार बार निश्चय निश्चय के चक्र में आते हैं तो आत्मा का पतन जरूर होगा। तो पुनर्जन्म लेते लेते कलाएं कम होती गई। ये कर्मकांड के तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में है ना? कर्मकांडों में क्यों फंस गए? हैं? द्वापर के आदि में तो एक शिवलिंग की पूजा होती थी, उसमें भी ज्योतिबिंदु हीरा लगा हुआ था, उसकी तरफ बुद्धि आकर्षित कराएगी तो वो हीरा ही याद करते रहते। फिर बाद में ये ढेर के ढेर कर्मकांड कहां से आ गए? हैं? तो जरूर जो अभिविचारी भक्ति की शुरुआत है वो किसी ने तो कराई होगी। हैं? वो जरूर हुआ ऊंचे से ऊंचा गुरु, और बाद में फिर विविचारी भक्ति की शुरुआत हुई तो वो भी कराने वाले कोई न कोई जरूर देहधारी गुरु हुए। तो ये कर्मकांड के तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में हैं, जिनसे कलाएं कम होती चली जाती। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन नहीं। ज्ञान ये नहीं कहता कि ये कर्मकांड करो भांति भांति के, तीर्थ यात्रा करो, गंगा स्नान करो, नहीं। यहां कोई शास्त्र नहीं। बाप आकर के सारा रात समझाते। क्या यहां कोई लिखे हुए शास्त्रों को पढ़ने की बात नहीं है? यहां किस बात, ये बात क्या है? यहां तो बाप ही सन्मुख आकर मुख के द्वारा माउथ टू माउथ सारा समझाते हैं। वो समझाया हुआ जब कोई दूसरा सुनाता है तो कुछ न कुछ उसमें अपने मिक्स, कुछ न कुछ मिक्स जरूर होगा, तो ज्ञान डिग्रेड हो जाएगा या ज्यों का त्यों बना रहेगा? कुछ न कुछ डिग्रेड हो। चलो टैप है, टैप ज्यों का त्यों सुनाएगा, जैसी आवाज बोले वैसी भरी जाएगी, लेकिन नहीं। टैप भी سیکنڈ اسٹیج ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس میں وائبریشن نہیں ہوں گے سنانے والے کے, ماحول نہیں ہوگا, دستی کی پاور نہیں ہوگی. اور باپ جب سناتے ہیں تو سنمکھ سناتے ہیں, اس میں درشتی کی پاور ہوتی ہے, وائبریشنز ہوتے ہیں, ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. تو یہاں کوئی شاستر نہیں ہے. شاستر تو منشیوں کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کا ویسا اثر ہوگا جیسے سنانے والے لکھنے والے منشی ہوں گے. اور یہاں تو باپ سنمکھ آ کر کے سمجھاتے ہیں, سارا راز بتاتے ہیں. پہلے پہلے تم بچے جیت پائیں گے اس پر کہ بھگوان ایک نراکار ہے نہ کہ ساکار. کیا کہا؟ کون سی بات پر پہلے جیت ہوگی؟ اسی بات کو سمجھانے کے اوپر جیت ہوگی کہ پرماتما جو ہوگا وہ نراکاری اسٹیج والا ہوگا یا ساکار اسٹیج والا ہوگا. نراکاری اسٹیج والا ہی پرماتما ہوتا ہے, پرماتما ہوتا ہی ہے نراکار. جیسے اور دھرم پتائیں دھرم استھاپن کرنے والے نراکاری اسٹیج میں دکھائے گئے ہیں, ویسے ان دھرم پتاؤں باپوں کا بھی باپ جو ہوگا وہ تو اور ہی زیادہ نراکاری اسٹیج میں ہوگا. تو اس بات پر ہی تم بچوں کو پہلے جیت پہننی ہے, اس بات پر ہی جیت پہننی ہے, یہی بات پہلے سمجھانی. پرم پتا پرماتما شیو بھگوان واد گیان کا ساگر سب کا باپ.
97 کا پراتھ کلاس 13 نمبر کے رجسٹر میں 62 پیج کا مدھیانت, ارتھات پہلے پیج کے مدھیانت کی وانی بات چل رہی تھی. یہاں کوئی شاستر نہیں ہے منشیوں کے لکھے ہوئے, یہاں تو باپ سنمکھ بیٹھ کر کے سارا رات سمجھاتے. تو پہلے پہلے تم بچے اس بات پر جیت پا دیں گے کہ بھگوان ایک نراکار ہے, کوئی ساکار منشی بھگوان نہیں ہو سکتا. پرم پتا پرماتما شیو بھگوان واچ گیان کا ساگر سب کا باپ وہ ہے. کرشن تو سب کا باپ ہو نہیں سکتا, کرشن کس کا باپ ہوگا؟ کرشن تو سوئم ساکار, تو ساکار کا باپ بھی کون ہوگا؟ ساکار کا باپ ساکار. ساکار میں کتنے بچے پیدا کیے جائیں گے؟ کرشن تو کس کو کہہ نہیں سکتا کہ دیہ کے سب دھرم چھوڑ ماں میں کم یاد کرو. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کیونکہ خود دیہ ابھیمان میں ہوتا ہے. جو کہے گا کہ مجھے ایک کو یاد کرو اور خود ساکاری ہو تو دوسروں کو بھی کیا بنائے گا؟ ساکار ہی بنائے گا, نراکار کیسے بنائے گا؟ کیونکہ ساکار منشیوں کو تو خود کیا ہوتا ہے؟ سوارتھ ہوتا ہے. ساکار من رتھ والا, سو رتھ, اپنے رتھ کے لیے جو کرے سو سوارتھی من ساکاری. اور پرماتما وہ تو ہے ہی نراکار, اس کا تو اپنا رتھ ہوتا ہی نہیں. تو جس کا رتھ ہی نہیں وہ کیسے سوارتھی ہوگا؟ وہ ہی نشکامی ہو سکتا ہے. باقی سب دنیا میں جتنے بھی ہوں سب سکامی ہیں, نشکامی منشی کوئی ہو نہیں سکتا. تو ہے یہ بہت سہج بات سمجھنا اور سمجھانا کہ نراکار بھگوان ہو سکتا ہے, کوئی ساکار بھگوان نہیں ہو سکتا. پرنتو منشی شاستر آدی پڑھ کر کے بھکتی میں پکے ہو گئے ہیں. شاستر جو منشیوں کے لکھے ہوئے پڑھے تو انہیں پڑھ پڑھ کر کے وہ پکے ہو گئے, چاہے وہ باہر کی دنیا کے شاستر ہوں اور چاہے وہ براہمنوں کی سنگم کی دنیا کے شاستر ہوں. مرلیوں کے پتے ہوں وہ بھی لکھے کس نے, چھپائے کس نے؟ بھگوان نے, منشیوں نے چھپائے. تو منشی جو کچھ کرتے ہیں
उसमें कुछ न कुछ अपना मिक्स जरूर हो जाए। दूध का भरा हुआ घड़ा हो और उसमें एक बूंद सांप का विष डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सारा ही विष हो जाएगा। तो परमात्मा की बोली हुई वाणी वो सन्मुख ही असर करेगी, सन्मुख सुनने वालों को असर करेगी, उसमें जादू होगा। बाकी फिर वो मनुष्य उसको दोबारा जब सुनाएंगे तो उसमें कुछ न कुछ मिक्स करेंगे, जब लिखेंगे तो भी मिक्स करेंगे, छपाएंगे तो भी कुछ न कुछ गलतियां रह जाएंगी। तो उसमें कुछ न कुछ मिक्स होने से वो सारा का सारा विष विष हो जाए, ज्ञान की जगह अज्ञान हो जाता है। तो मनुष्य शास्त्र पढ़ पढ़ के पक्के हो जाते हैं भक्ति मार्ग, जैसे यहाँ मुरलियों के पत्ते पढ़ पढ़ करके उसमें बार बार लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है मुरलियों में? पिता श्री शिव बाबा याद। तो शिव बाबा कौन हो गया? पिताश्री ब्रह्म। तो बार बार रोज रोज वो मुरली पढ़ना, रोज रोज पढ़ना, रोज रोज प्रैक्टिस करते करते बुद्धि में ये पक्का हो गया कि पिताश्री ब्रह्मा ही भगवान का रूप है। तो जब फाउंडेशन ही ऐसा पड़ गया शुरू से तो वो पक्का हो जाता है। तो ये बात जो पक्की बुद्धि में बैठ गई कि पिताश्री ब्रह्मा ही शिव बाबा है, ये पक्का हुआ बात, इसको निकालने के लिए हाँ फिर ये बात बतानी पड़े, पहले ये बात पक्की करानी पड़े कि परमात्मा तो निराकार है। आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रख करके परिक्रमा देते हैं, हैं? हाँ? गाड़ी में शास्त्रों को रख लेंगे ट्रक में, और ट्रक में शास्त्रों को रख करके परिक्रमा देते हैं। कब? आजकल। पुराने जमाने में नहीं ऐसा करते थे, और आजकल ऐसा करने लगी। ये भी कहाँ की यादगार? कैसे हैं? हैं? कौन कौन से ट्रक में ले जाते हैं? नहीं, ट्रक माने गाड़ी, शरीर रूपी गाड़ी, शरीर रूपी कार या ट्रक, जो ज्यादा पुरुषार्थ करे, ज्यादा लोड उठाए तो ट्रक, कम लोड उठाए तो कार। हा? तो शिव बाबा का जो रथ बनता है वो तो ट्रक हो गया। हा? उस ट्रक ने जरूर संगम युग में कोई शास्त्र का वजन ढो करके परिक्रमा लगाई होगी सारे भारत में। तो उसकी यादगार में जगन्नाथ के मंदिरों में शास्त्रों को ट्रक में रख करके परिक्रमा लगाते। तो शास्त्रों आदि को गाड़ी में रखकर परिक्रमा देते हैं आजकल। हाँ, जहाँ जहाँ जगन्नाथ के मंदिर होते हैं वहाँ ट्रक में शास्त्र रख लेते हैं, और शास्त्र रख करके उनकी मूर्ति रख करके परिक्रमा लगाते, चित्रों को ग्रंथ को भी परिक्रमा दिलाते हैं, क्या सिख लोग भी? हाँ, ग्रंथ को रख लेंगे और फिर उसकी परिक्रमा, उसको परिक्रमा दिलाएंगे, फिर घर ले आकर के सुलाए देते। हाँ, अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। क्या कहा? वो तो ऐसे ही सुलाए देते हैं, वैसे ही परिक्रमा लगा देते हैं, उसका अर्थ कुछ नहीं जानते। लेकिन अभी हम बच्चे इस बात के राज को जानते हैं। क्या क्या राज को जानते हैं? कि वही रामकृष्ण की आत्मा जिस शरीर रूपी ट्रक में बैठ करके शास्त्रों को लेकर के परिक्रमा लगाती है, घर घर में जाके संदेश देती है, वही फिर बाद में जब शूटिंग का जो चक्र चलता है उस चक्र में फिर विशेष पार्ट बजाती है। कौन सा पार्ट? सतयुग की शूटिंग में सतो प्रधान देवता का पार्ट, त्रेतायुग की शूटिंग में क्षत्रिय का पार्ट, द्वापर में वैश्य विशेष का पार्ट और कलयुग में शूद्र का पार्ट। तो पार्ट बजाना एक बात और असलियत होना दूसरी बात होती। जैसे कोई रंगमंच पर पार्ट बजाता है जाके गधे का, तो क्या गधा हो गया है? हाँ, अगर पार्टधारी अपने पार्ट को जानता है तो वो कोई गधा का पार्ट बजाता गधा है थोड़े ही। तो इस बात की गहराई को जो देखने वाले शास्त्रवादी हैं, भक्ति मार्ग वाले पक्के, वो नहीं समझ पाते। वो समझते हैं गधा ही होगा, देह अभिमान की मिट्टी में बार बार लौटने वाला, तो वो उसको उसी रूप में देख लेते। और जिस रूप में उन्होंने देखा है वैसे ही उन्होंने जगन्नाथ के मंदिर में गंदे चित्र बनाए दिए। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, ये चक्कर लगाते हैं शूटिंग पीरियड में भी और ब्रॉड ड्रामा में भी। चक्र के बदले वो फिर परिक्रमा दिलाकर घर में जाए रख देते हैं सुलाने के लिए। उनका एक मुकर्रर दिल रहता है, किनों का परिक्रमा दिलाने के लिए उनका एक मुकर्रर दिन होता है। जब परिक्रमा दिलाते हैं तो पहले पहले ये सिद्ध करके बतलाना है, श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं है। जब परिक्रमा दिलाते हैं तब सिद्ध करके बतलाना है कि श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं है, परंतु शिव भगवान वाच। उवाच किसने किया? बिंदी उवाच नहीं कर सकती जिसको तुम निराकार भगवान समझते हो। शिव भगवान वाच कहते हैं तो वो क्या समझ लेते हैं कि बिंदी ने उवाच किया। बिंदी उवाच नहीं करती, न कृष्ण भगवान उवाच करता है, कृष्ण तो भगवान होता ही नहीं। उवाच कौन करता है वास्तव में? भगवान उवाच जिसे कहते हैं वो तो निराकारी स्टेज वाला उवाच करता है। शिव ही पुनर्जन्म रहते, कृष्ण पुनर्जन्म रहते हैं, ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं सुना होगा क्या कि कृष्ण और बलराम पुनर्जन्म रहते हैं? नहीं, उनके लिए तो कहते हैं कि राम और लक्ष्मण का जो जन्म था वो फिर द्वापर में आकर के कृष्ण बलराम बने, तो पुनर्जन्म रहित कहाँ हुए? वो तो जन्म वाले हो गए, जन्म मरण के चक्र में आने वाले। तो शिव ही पुनर्जन्म रहित है, तो कौन सा देवता है जिसको पुनर्जन्म रहित बताते हैं? एक शंकर ही ऐसा देवता है जिसको पुनर्जन्म रहित बताते हैं, अजन्मा बताते हैं। वेद का अर्थ क्या हुआ कि वो जन्म मरण के चक्र रूपी निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आता है। वो एक ही आत्मा ऐसी संगम युगी शूटिंग पीरियड में पार्ट बजाने वाली पहले मैदान में आती है, जो कभी निश्चय अनिश्चय के चक्र में आने वाली नहीं होती है। अटल निश्चय वाली ध्रुव तारा का यादगार बनाया हुआ है। तो वो पुनर्जन्म रहते हैं, वो आते जरूर हैं, ऐसे नहीं कि जन्म मरण के चक्र में नहीं है तो वो आते ही नहीं है। सृष्टि पर आते भी हैं और इस सृष्टि पर नीचे आने के बावजूद भी हे पतित पावन आओ। पतितों ने किसको बुलाया? एवर प्योर को बुलाया कि तुम भी नीचे उतर आओ, हम तो नीचे गिरे हुए हैं, तुम भी क्या करो, तुम भी नीचे गिरो। जो आदमी डूबता है तो डूबने वाला तो चाहता है कि हमको सहारा मिले, कोई आए हमको और डुबकी मार के हमको नीचे से ऊपर ले जाए। तो वो आते जरूर हैं, ऐसे नहीं ऊपर ही बैठे रहते हैं, वो नीचे नीची स्टेज में आते जरूर हैं, परंतु उनका दिव्य जन्म है, उनका आना भी कैसा है, दिव्य दिव्यता से भरा हुआ उनका जन्म है। भागीरथ पर आकर सवार होते हैं। सवार किस पर होते हैं? भाग्यशाली रथ पर। उन्होंने भागीरथ का ही अर्थ उल्टा कर दिया है? जो हार्ट फेल होकर के शरीर खत्म कर दे तो उसका नाम रख दिया भागीरथ। खांसते खांसते शरीर ही खत्म हो जाए उसका नाम रख दिया भागीरथ। अरे भागीरथ तो वो हुआ जो अपने रथ को कंचन काया इसी जन्म में बना ले, तो वो भागीरथ संसार में गाया जाए। भाग्यशाली रथ पतितों को आकर पावन बनाते हैं, किसके द्वारा? भागीरथ के द्वारा। कि ऐसे बिना पावन बनाए चले जाते हैं, भागीरथ में आएगा तो उस भाग्यशाली रथ के द्वारा क्या करेगा? पतितों को पावन बनाएगा कि बिना पावन बनाए वापस चला जाएगा, फिर वो भागीरथ कहा जाएगा है? भागीरथ तो वो जिसके संसर्ग संपर्क में आकर के दूसरी भी आत्माएं भाग्य को प्राप्त करें। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का बाप आकर राह समझाते, जो नॉलेज और कोई मनुष्य नहीं जानते हैं कि रचयिता कौन है और उसकी फर्स्ट क्लास रचना कौन है। तो बताओ रचयिता कौन और उसकी फर्स्ट क्लास रचना कौन? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राह समझाते हैं। हाँ, रचयिता जरूर साकार में होना चाहिए। उस साकार के द्वारा ही बिंदु ज्योति बिंदु बाप रचयिता का पार्ट बजाते हैं। तो वो रचयिता हुआ नई सृष्टि का, नई सृष्टि की दुनिया का। और फर्स्ट क्लास रचना कौन है? फर्स्ट क्लास रचना हुई ब्रह्मा सो विष्णु, वो हुई फर्स्ट क्लास रचना। उसके आदि मध्य अंत रचना का पार्ट क्या हुआ? आदि में कौन? आदि में फर्स्ट क्लास रचना कौन? कृष्ण। सचिव के आदि में होगा कृष्ण, मध्य में होगा राजा विक्रमादित्य, और अंत में फिर दादा लेखराज वो फर्स्ट क्लास रचना बच्चा हो गया। फर्स्ट क्लास रचना कौन होती है? बच्चा, बाप का बच्चा ही उसकी फर्स्ट क्लास रचना होती है, जो बाप को शो करता है। तो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राह समझा, जो नॉलेज और कोई नहीं समझाया जानते। बाप को आप ही अपना आकर के परिचय देना होता है। क्या उनका परिचय यथार्थ रूप में और कोई नहीं दे सकता? एक तो वो खुद ही आते हैं और खुद ही आकर के अपना परिचय देते। मुख्य बात है इस बाप के परिचय की, और बातें तो सब हैं ज्ञान की गौड़ सामान्य, लेकिन मुख्य बात क्या है? बाप का परिचय देना, ये समझ लो मुख्य ज्ञान है। सर्वव्यापी अक्षर बहुत ग्लानी का है, फिर महिमा का अक्षर कौन सा है? एक व्यापी है, वो एक में आता है सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाने के लिए। अनेकों में आकर के पतितों को पावन नहीं बनाता, अनेकों में आकर के पतितों को पावन बनाए तो फिर सब क्या करेंगे? अनेकों के साथ संबंध जोड़ेंगे इंद्रियों का कि एक के साथ जोड़ेंगे? तो फिर क्या, कौन सी दुनिया बनेगी? ये विचारी नरक की दुनिया वैश्यालय बनेगी या शिवालय बनेगा? फिर तो वैश्यालय बन जाएगा। तो जो वैश्यालय बनाने वाले हैं वो ढोल पीटते हैं परमात्मा सर्वव्यापी। हम भी पतितों को पावन बनाने वाले, तुम भी पतितों को पावन बना ले। हमसे भी सुनो, उनसे भी सुनो, सबसे सुनो, तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। जो संदली पे बैठे तुम ऐसे ही समझो शिव बाबा ही हमें ज्ञान सुनाते हैं।
तुम ऐसे ही समझो शिव बाबा ही हमको दृष्टि देते हैं, तो क्या होगा? तो सर्वव्यापी होगी। तो वास्तव में पहले मुख्य बात है बाप का परिचय देना। सर्वव्यापी अक्षर बहुत ग्लानी का है, कोई तो मुख से कहते हैं सर्वव्यापी, और कोई एक्ट ऐसी करते हैं जिससे सबको समझ में आ जाए कि परमात्मा दीदी दादी दादा सबके अंदर परमात्मा आया हुआ है। ये गीता से ही उन्होंने उठाया है, परमात्मा सर्वव्यापी। हमारी कौन सी गीता है? मुरली। तो जो मनुष्यों की लिखी मुरली है जिसमें उन्होंने कृष्ण भगवान वाच, पिता श्री ब्रह्मा भगवान वाच याद लिख दिया, तो उससे ही ये अर्थ निकल पड़ता है। क्या? क्योंकि उसका अर्थ ही झूठा कर दिया। पहले अर्थ शास्त्रों के ऐसे नहीं थे, बाद में उनके इंटरप्रिटेशन गलत कर दिए। तो कृष्ण को भगवान समझने के कारण सारी गड़बड़ हुई। सर्वव्यापी अक्षर कहां से उठाया? गीता से ही उठाया सर्वव्यापी अक्षर। गीता में ही लिखा हुआ है श्री कृष्ण भगवान वाच, साकार कृष्ण भगवान हो गया, पिता श्री ब्रह्मा भगवान हो गया, शिव बाबा हो गया। तो गीता से ये उठाया है और भागवत में दिखाई है कृष्ण के चरित्र। ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया की भागवत कौन सी है जिसमें भगाने की कथा है? अद्भुत कथा, अद्भुत कर्म है, एक अद्भुत जीवन कहानी। कहानी माने कथा। तो उसमें 300-400 जो गोप गोपियों को भगाने की कथा लिखी हुई है उस पुस्तक में, वो अद्भुत कर्म किसने किया? बूढ़े ब्रह्मा ने किया वो कार्य क्या? नहीं, अरे वो तो शिव बाबा का कार्य था। शिव बाबा ने प्रजापिता के द्वारा ये कहानी ये कार्य संपन्न किया था। नाम किसका डाल दिया? रचना ब्रह्मा का। अरे ब्रह्मा तो स्वयं ही बड़ी माँ है, तो जरूर कोई बड़े बड़ा बाप भी होगा। तो गड़बड़ कर दिया ये। तो कृष्ण को भगवान, ब्रह्मा को भगवान समझने के कारण ही सारी गड़बड़ हुई है। कृष्ण का नाम ही निकल जाएगा तो बायोग्राफी चरित्र आदि सब उड़ जाएंगे। क्या अद्भुत जीवन कहानी में जो बायोग्राफी दिखाई है बैठ ब्रह्मा की, वो बायोग्राफी भी सारी उड़ जाएगी। कब उड़ जाएगी? जब उसमें से गीता में से जो सच्ची गीता है, ब्राह्मणों की सच्ची गीता कौन सी है? मुरलियां। मुरलियों में से पिता श्री ब्रह्मा का नाम उड़ाई दिया जाए। तो बायोग्राफी चरित्र आदि सब उड़ जाएंगे। कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, ये तुम सिद्ध करके बताएंगे। क्या? कि कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। जो गीता का भगवान होगा वो तो राजधानी स्थापन करके दिखाएगा, वो पुरानी दुनिया का, पुराने संगठन का विनाश करके दिखाएगा। और धर्म पिता ये कार्य नहीं करते, परमात्मा बाप आकर के ये कार्य करते हैं कि सब धर्म की स्थापना और असत धर्मों का विनाश करते हैं। असत राजधानी की स्थापना नहीं करते हैं, वो सत राजधानी जो सच्ची राजधानी है स्वर्ग की, उसकी स्थापना करते हैं। और जितनी राजाइयां हैं दुनिया में वो सब खलास हो जाती है। तो जब तुम ये सिद्ध करके बतलाएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। नाम बाला कब होगा? किस बात से? गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, इस बात से ही नाम बाला होंगे। तो ये तो बहुत बोल ढोल पीट दिया तथाकथित तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने दुनिया में कि गीता का भगवान निराकार शिव ज्योति बिंदु है, साकार कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। चारों तरफ दुनिया में देश विदेश में ढोल पिट गए, आवाज हो गई, फिर क्या हुआ? नाम बहुत बाला हुआ किसी का? नहीं हुआ, हो नहीं सकता। जो ढोल पीटने वाले हैं वो खुद इस बात की गहराई को नहीं जानते हैं, खुद वो ही गलती करते हैं जो दुनिया भी भक्ति मार्ग वालों ने की। उन्होंने क्या गलती की? निराकार की जगह साकार कृष्ण का नाम डाल दिया, साकार देवता का नाम डाल दिया। ऐसे ही ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने क्या किया? शिव बाबा की जगह पिता श्री ब्रह्मा का नाम डाल दिया। तो गलती तो वो ही की जो दुनिया वालों ने की। तो जो दुनिया वाले गलती कर रहे हैं वो ही फिर पढ़ाई पढ़ाने वाले गुरु गलती कर रहे हैं। आप गुरु जी बैंगन खाएं, दूसरे को तरकीब बताएं कि बैंगन नहीं खाना चाहिए, तो चेले चपाटे मानेंगे? उनके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ सकता। दूसरा पेज, तुम बच्चे आपस में जब मिलते हो तो मीटिंग करो कि क्या उपाय निकालें जो गीता के भगवान की बात सिद्ध हो जाए। उपाय क्या निकालें? गीता में कृष्ण का नाम होने के कारण ही लड़ाई आदि की बात लिख दी है। अगर गीता में कृष्ण का नाम न होता तो फिर लड़ाई की बात ही नहीं, क्योंकि साकार ही लड़ाई लड़ते हैं और लड़वाते हैं। निराकार ज्योतिबिंदु, जो निराकारी स्टेज वाला होगा वो तो मारा मारी नहीं करना सिखाएगा। जो देह अभिमानी होते हैं वो मारा मारी करते हैं और दूसरों से कराते हैं। जो देह अभिमानी होगा ही नहीं तो वो निराकारी स्टेज में दूसरों को टिकाएगा, निसंकल्पी होना सिखाएगा। वो तो कर्मों की गुजर गति बताएगा कि अगर किसी ने तुमको दुख दिया है तो मारपीट करने से वो दुख देना बंद नहीं करेगा। कब बंद करेगा? जब तुम्हारी बुद्धि में ये बात बैठ जाए कि तुम्हारे कर्मों का जो पूर्व जन्म का लेखा जोखा है जब तक रहा हुआ है तब तक तुमको कोई दुख दे सकता है। जब वो लेखा जोखा समाप्त हो जाएगा तो कोई तुमको दुख नहीं दे सकता। तो बाप तो निराकारी निसंकल्पी स्टेज में रहना सिखाएंगे, वो कोई चीज से युद्ध करना नहीं सिखाएंगे। स्थूल युद्ध की बात नहीं। तो ऐसा पर्चा बना करके उसमें चित्र आदि भी लगा करके क्या कहा? ऐसा पर्चा बनाओ। क्या पर्चा बनाओ? कि गीता का भगवान, जो सच्ची गीता मुरलियां हैं उनको आप भगवान, उन मुरलियों का, उन गीता का, गीता माता का, गीता पति भगवान कोई कृष्ण अर्थात ब्रह्मा नहीं है, ऐसा पर्चा बनाओ। उसमें चित्र आदि भी लगाओ कि गीता माता कौन है। उन्होंने तो गीता माता किताब बनाई दी। अरे कोई कागज की किताब माता होगी क्या? अरे माता तो चैतन्य में होती है। जैसे उन्होंने कह दिया धरणी माता, भारत माता, तो लोगों ने क्या समझ लिया कि भारत कोई जमीन का नाम है, भारत माता। अरे भारत माता जब कहा गया तो जरूर उसके साथ पिता भी होगा, हैं, बाल बच्चे भी होंगे। उन माता पिता की गोद में पलने वाले भारतवासी तो उस बात को भूल गए। तो ऐसे ही यहां तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने क्या कर दिया? लड़ाई आदि की बातें लिख दी, ब्रह्मा का फोटो छपाई दिया। तो अब तुम क्या करो कि ऐसा पर्चा बनाओ, उसमें चित्र आदि भी लगाओ। हाँ, कौन सा चित्र लगाओ? निराकार भगवान, निराकारी स्टेज वाला जो गीता पति भगवान है उसका भी चित्र लगाओ, और गीता माता, गीता माता जो ब्रह्मा है उसका भी चित्र लगाओ। एक तो टाइटलदारी ब्रह्मा, दाढ़ी मूछ वाला, मूछा फरकाने वाला, उसका भी चित्र लगाओ, और दूसरा जो ओरिजिनल ब्रह्मा है, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, बड़ी माँ सारी सृष्टि की, तुमेव माता च पिता कहते हैं ना, तो जो माता के रूप में भी आता है, पिता के रूप में भी आता है, सारी दुनिया उन्माद पिता को मानती होगी, सारी दुनिया, तो सारी दुनिया तो एडम ईव को ही मानती है क्या? ऐसे नहीं कि ब्रह्मा को ईव भी मान ले और ब्रह्मा को एडम भी मान ले ना, सारी दुनिया के सामने तो वो प्रत्यक्ष ही नहीं हुए, पहले ही शरीर छोड़ करके चले गए, तो सारी दुनिया कैसे मान लेगी? तो उसमें चित्र आदि लगाओ, माता का भी तो पिता का भी, फिर एरोप्लेन से वो पर्चे गिराने चाहिए, उन पर्चों में लिख दें कि इस कारण भारत कंगाल बना है। भारत कंगाल क्यों हुआ? ये कारण हुआ कि गीता का भगवान, हाँ कृष्ण बनाई दिया, बच्चे को बनाई दिया, तो जब ऐसा जुल्म किया जाएगा कि बाप की जगह बच्चे को गीता का पति बनाई दिया जाएगा, है? गीता माता भी इस बात को भूल जाए क्या? किस बात को? कि मेरा पति कौन है? जैसे रशिया में होता है, रूस में क्या होता है, बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसको नहीं नर्सिंग होम में डाल दिया जाता है, नर्सिंग होम से बड़ा होता है तो उसको हॉस्टल में डाल दिया जाता है, नर्सरी स्कूल में, फिर बड़ा होता है तो बड़े हॉस्टल में डाल दिया जाता है, और बड़ा हुआ तो ट्रेनिंग स्कूल में डाल दिया गया, और ट्रेनिंग स्कूल से निकला तो वो राष्ट्र की संपत्ति बन गई। अब वो सरकारी कार्यकाज कर रहा है, होटलों में रहता है, बच्चा 17-18 साल का नौजवान हो गया और उसको पता ही नहीं हमारी माँ कौन सी है, 20-21-22 साल का, 25 साल का हो जाने के बाद माँ उसकी सामने आ जाए तो पहचान पाएगा नहीं? तो बच्चा तो बेचारा बच्चा, और माँ तो एजेड होगी, उसको पता ही नहीं मेरा बच्चा कौन। तो होटलों में रहना, होटलों में जिंदगी बिताना, तो क्या संसर्ग संपर्क नहीं हो सकता क्या? हैं? तो क्या हुआ? तो इसी दुनिया में ऐसे ऐसे देश भी हैं कि जहां भगवान बाप रचयिता की और रचना की जानकारी नहीं है, बाप कौन है और बच्चा कौन है यही पता नहीं। तो ऐसा जुल्म, जिससे बड़ा जुल्म कोई होता नहीं, अधर्म, वो कर दिया भारतवासियों ने, बच्चे को बाप पति बनाई दिया गीता का, गीता माता को भी पता नहीं कि मेरा पति कौन है वास्तव का, वास्तव में जन्म जन्मांतर का। तो जब ऐसी स्टेज हो जाती है तब भारत का हाल क्या होता है? भारत कंगाल हो जाता है, बैगर के रूप में दिखाया, कैसा कंगाल, विदेशी उसको भीख देते हैं। तो उसमें लिखते हैं कि इस कारण भारत कंगाल बना है, फिर बाप आकर के राइट बना दे कंगाल भारत को, बैगर भारत को, बैगर टू प्रिंस बनाते हैं, बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते, तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने समझ लो जीत पाई ली।